शांति। सभी को मधुबन पांडव भवन में बाबा की तपस्या भूमि में मजा आ रहा है ना। किसी को लौकिक घर की धंधे की परिवार की याद तो नहीं आ रही? पक्का अभी तो और भी 3 दिन रहने। तो ऐसे सुंदर अलौकिक वातावरण में हम सभी बाबा के सौभाग्यशाली बच्चों को यहाँ पर बाबा के घर में समर्पित अमूल्य रतन, उन सभी के अंदर जो भरे हुए खजाने हैं, उन खजानों का हम सभी को लाभ मिल रहा है। तो आज हमारे सामने जो बैठे हैं रामनाथ भाई जी, तो पहले तो हम सभी उनका एक हाथ से दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत करते हैं। रामनाथ भाई जी बहुत ही छोटी उम्र से, लगभग 15-16 वर्ष की उम्र से ही बाबा के बच्चे बने हैं और कॉलेज में अभ्यास करने के बाद इन्होंने अपना जीवन बाबा की सेवा में, पढ़ाई भी की, सर्विस भी की, इंजीनियर बने और 40 वर्ष से आप बाबा का बच्चा बने हैं, लेकिन 35 वर्ष से मधुबन में इस यज्ञ में समर्पित है। देश और विदेश में आप अपने ज्ञान और अनुभव के खजाने को बांटते हैं, अनेकों को अपने अनुभवों से लाभान्वित किया है और आज हम सभी भाग्यशाली आत्माओं को उनके अनुभव के खजाने का लाभ मिलेगा। और आप विशेष रिलीजियस विंग जो अपनी है, धार्मिक विंग, उसके मधुबन की ओर के कोऑर्डिनेटर हैं, सारे धार्मिक विंग की सेवाओं को संभालते हैं और भारत में जहां कहीं भी प्रोग्राम होते हैं तो आप सेवाएं देने के लिए जाते हैं। विशेष और कुछ नहीं कहकर उनसे सुनने का हम सभी सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आप विशेष अपना समय निकाल कर आए हैं, इसीलिए हम सभी को बहुत 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 खुशी है। ओम शांति।
ओम शांति। बहन जी ने दो बात आप सबसे पूछी, एक आप सबको पूछा यहाँ अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा थोड़ी लग रहा है, बाबा को बच्चे देख करके बाबा बहुत खुश है, है ना। बाबा कहेगा मधुबन में मेरे बच्चे मेरे मधुबन में आए। बाबा किधर का है? मधुबन का बाबा है ना। तो बाप के घर में अगर बच्चे आते हैं तो खुशी किसको होती है? बाप को होती है, है ना। तो बाबा खुश है। फिर बहन जी ने पूछा यहाँ रहते हुए आपको परिवार याद आता है, लेकिन बाबा को अपना परिवार याद आता है? आपको नहीं आता है, बाबा को तो अपने परिवार बच्चे याद आते हैं, तो चलेगा ना। हाँ, तो बाप हम बच्चों को याद करता है, तो बाबा का एक ही परिवार है। तो आज बाबा ने विशेष माता, एक पॉइंट बताओ, आज बाबा ने आप माताओं को क्या करने के लिए कहा? विशेष एक पॉइंट, वारिस बनाने के लिए कहा, ये सेवा करो। चलो और भाई बताओ विशेष, क्या पॉइंट सुनाया आज? भगवान के महावाक्य क्या है? हाँ, बाबा ने कहा बच्चे स्कॉलरशिप ले लो। किसको स्कॉलरशिप मिलेगा? ज्ञान और योग चाहिए, पढ़ाई पर भी ध्यान चाहिए और योग भी चाहिए। और बाबा ने कहा याद और पढ़ाई में, दोनों में बैलेंस चाहिए। फिर बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, बाप बच्चों को आशीर्वाद नहीं करते हैं, वो भक्ति वाले करते हैं। लेकिन बाबा का आशीर्वाद किसको कहेंगे? करता तो जरूर है, लेकिन कैसे करता है कि बच्चों के जीवन में कोई असंभव चीज है, ये हो नहीं सकता है, तो वो संभव होता है। तो ये कैसे हुआ? तो बाबा बच्चों को मदद करता है, तो ये बाप के बच्चों को आशीर्वाद है। तो आशीर्वाद कैसे करता? ताश तो करके हाथ नहीं रखता है, तो देखता है बच्चों के जीवन में क्या चीज असंभव है, तो वो संभव करके दिखाता है बच्चों को, ये आशीर्वाद है। और आज विषय टॉपिक रखा है कि श्रीमत के अनुसार सेवा। तो वास्तव में आपको पोरबंदर में इधर कहां बापू नगर में आए थे तभी भी सुनाया था, ऐसा लगता है ये टॉपिक है ना, याद है? याद है पक्का? तो कौन बताएगा कि श्रीमत के अनुसार सेवा किसको कहते हैं? मनमत में सेवा और श्रीमत में सेवा, अगर सुनी हुई वो अच्छी तरह से याद है, कौन बताएगा? उदाहरण एक चीज बताओ। करो और दूसरों के द्वारा कराओ। तो श्रीमत और मनमत कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? हाँ ना ना चलेगा, ठीक है बैठो। हाँ तो बाबा की मुरली श्रीमती, तो मुरली बाबा के मुरली के अनुसार करेंगे ना, कि बहनों ने कहा वैसे करेंगे। हाँ माना जो सुना हुआ याद है, देखना पड़ेगा ना, नहीं तो वो सुना हुआ वह उधर छोड़ के आए कि क्या? हाँ तो उसका छोड़ के नहीं आए, लेके आए हैं। हाँ तो बाबा ने वही कहा कि किसी को ये समझ में नहीं आता है श्रीमत और मनमत, बहुत लोगों को समझ में आता है। कोई भी अगर आप कहीं सेवा करते हो, बाहर ज्ञान सुनाना है किसी प्रकार, श्रीमत के अनुसार और मनमत क्या है? मुरली सुनी, मुरली के सुनकर बाबा का श्रीमत मुरली है ना, तो उसके अनुसार श्रीमत समझते हैं हम। हाँ करो, लेकिन बाबा ने कहा यहां अगर आप कुछ करना चाहते हो तो यहां की व्यवस्था देखने वाले कोई निमित्तात्मा है, उनको पूछ के करना चाहिए, तब उसको कहते हैं श्रीमत के अनुसार। एक का पदम गुना जमा होता है, क्योंकि बाबा कहता है कि बच्चों को, माता जी ने कहा कि बाबा आता है बच्चों को वर्षा देने के लिए, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस है ना, निरोगी काया निर्मल मन और धन संपत्तियों से भरपूर, तो सभी बच्चों को मिलेगा वर्षा। बाबा के बच्चे तो सभी है, सभी बाबा कहते हैं, तो सभी को मिलना चाहिए ना, तो क्यों नहीं मिल रहा है? प्रश्न यहां आया, अगर बाप के बच्चे बनने के बाद भी, क्योंकि बाबा भी ऐसे करता है क्या कि एक को ज्यादा एक को कम देता है, तो क्यों हो रहा है? तब बाबा ने कहा बच्चे तन कहां लगा रहे हो, 24 घंटा आपका तन है, आप एक मिनट भी एक सेकंड भी कहो बाबा टिकट 5 मिनट के बाद आता हूं, चलेगा? आप कह सकते हो शरीर मेरा है, एक मिनट भी आप शरीर में ज्यादा रह सकते हो? नहीं, ये तन आपका नहीं। फिर मन आपका है, मन में जैसे विचार चाहे कहते मेरे मन में अशांति है, तो मेरे मन में अशांति किसने लाया? तो आपने लाया, तो बाबा ने तो मन अशांत वाला नहीं दिया था है ना, तो धन आपने लाया। तब कहा तन मन धन कहां लगना चाहिए? तब सृष्टि पर देखो, कोई धनवान है, कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अच्छा है, कोई किसी को जन्मते ही बीमारी है, कारण तो कहते भगवान ने ऐसी रचना क्यों रची? भगवान ने ऐसी रचना रची, भगवान ने ऐसी रचना रची थी, ये हमने ऐसा बनाया कर्म, तो वो कर्म जानना चाहिए, ये किस कर्म से मुझे ऐसी बीमारी मिली, मुझे ऐसा गरीब बनना पड़ा, मुझे ऐसा परिवार मिला, कौन सा कर्म, ये समझ देता है बाबा। तो वो समझ के दोबारा इस जन्म में ज्ञान मिलने के बाद दोबारा ऐसे कर्म ना हो, तब आपने अपने कर्मों को परिवर्तन किया। नहीं तो कल भी गुस्सा करते थे, आज भी दुख देने वाले आज भी है, आज भी आपने गुस्सा किया, तो ज्ञान सुनकर के अंतर क्या है, फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं। तो ज्ञान उसके लिए है जो कल तक मेरे स्वभाव संस्कार आचरण था,
तो ज्ञान सुनने के बाद वो व्यक्ति तो वही होगा, पति तो वही है, गुस्सा कर रहा है, बहुत खराब व्यक्ति है, वही है। वो दूसरा पति नहीं आएगा, दूसरे बच्चे नहीं आएंगे, परिवार वाले वही है, उनके साथ ही रहना है, उनको छोड़ के कहां जाएंगे, उनके साथ ही रहना है। और रहते हुए भी ज्ञान सुनने के बाद अपने आप को समझाना है, इनको परिवर्तन करना है, इनका गुस्सा छुड़ाना है, नहीं ये गलत है, इनको मुझे परिवर्तन कराना है, नहीं करना है, वो नहीं कर सकते आप, मुझे परिवर्तन करना है। कभी कभी होता है ऐसा, ज्ञान सुनने के बाद हम औरों को परिवर्तन करते हुए देखना चाहते हैं, ऐसे ही है ना। आप सोच लो, मुरली सुनने के बाद, ज्ञान सुनने के बाद आप क्या कहते हैं, इनको परिवर्तन करना है, इनको ठीक करना है, यही लक्ष्य है। 99% ज्ञान सुनने के बाद, बाबा के बच्चे होने के बाद भी, 25 साल भी हो तो एक अभी भी वही समझ है, इनको ठीक होते हुए मैं देखना चाहता हूं, इनको देवता बनाना है, यही लक्ष्य है, ये गलत लक्ष्य है। इनको ठीक करना मेरा काम नहीं, मुझे ठीक होना है। ये समझ में आया तब कहेंगे आपके अंदर ज्ञान समझ में आया, ज्ञान की धारणा हुई है। कितना भी ज्ञान सुन लो आप तो धारणा नहीं हुई है, धारणा हुई प्रूफ, आप कभी कभी आपके मुख से कभी नहीं आता ये गुस्सा करता है, ये खराब है, ये अगर हमारे मुख से आ रहा है तो ज्ञान अभी भी धारण नहीं हुआ है। सोच लो आप कितने साल भी ज्ञान में चलो, तो धारण बना याद है, ड्रामा में हरेक का अपना अपना पार्ट है, इनको अपना पार्ट बजाना है, इनका पार्ट मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। ये ज्ञान का पहला स्टेप है ना, समझ दिया बाबा ने, बच्चे ड्रामा में इस संसार में हरेक को अपना अपना पार्ट है, वो अपना पार्ट बजाएंगे। बहुत तेज बरसात पड़ रही है, आप रोक लो, सारा दिन 2 बजे उठ करके तपस्या करो, रोक सकते हो नहीं। आपको अगर बरसात नहीं चाहिए, छाता लेके जाओ, अपने को बचाओ, बरसात को बचाने रोकने नहीं जाओ। किसी कोई एक तपस्या कर रहा है, बरसात चाहिए, खेती बोई है उसने, वो तपस्या कर रहा है, मुझे बरसात चाहिए, और इधर एक तपस्या कर रहा है बरसात को रोको, तो भगवान किसका सुने, आपका सुने कि इनका सुने, है ना। भगवान को भी दुविधा में डाल देते हो कभी कभी। तब कहा बच्चे नेचर, हर एक का अपना नेचर स्वभाव है, कोई किसी को कर नहीं सकता है, आप अपने को करो। तो आप अगर चुप रहते हो अपने चलन से, तो पति देखता है, बच्चे देखते रहे, मम्मी कल बहुत बोलती थी, बहुत गुस्सा करती, अभी कल आजकल कुछ बोलती नहीं है। पति देगा, मैं कुछ भी करूं बहुत गुस्सा करती थी, बहुत कुछ बोलती थी, आजकल कुछ बोलती नहीं है। लेकिन वो आपको नहीं बताएगा, दूसरों को बताएगा जाके, हमारे घर में तो एक लक्ष्मी आई है, देवी आई है, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोलती है। तो वो आपको नहीं बोलेगा, औरों को जरूर बताएगा। एक पति आया तो ज्ञान में चलता था, ज्ञान छोड़ दिया, माताजी जाकर के भोग देती है, बिल्कुल खत्म नहीं, फेंक देता है। लेकिन माताजी ने कहा क्या करे, ज्ञान में चलता था, जाके टेबल पर रखती है, माताजी इधर उधर गई, जाके खाती खाता है। एक दिन देखा, मैंने अभी भोग रखा है, इधर कहां गया, देखा खा रहा था, मेरे पीछे खाएगा, आपके सामने नहीं खाएगा, है ना। तो वो आपके पीछे बोलेगा। तब बाबा ने कहा बच्चे आचरण से सिखाओ। संभव है बापू नगर में बाबा आ सकता है? हाँ, तो आ सकता है। कब आएगा, कब आएगा बताओ? 1 साल पहले, अभी नहीं, 1 साल भी नहीं हुआ, 6 महीना हुआ, 9 महीना हुआ, 10 महीने हो गया। चलो 10 महीने के अंदर आपने दान दिया था, क्या दान दिया था मुझे तो याद है, क्या दान दिया था वो? हाँ, अभी बाबा के दरबार में पूछना पड़ेगा ना। अब बताओ कि किसने क्रोध छोड़ा 10 महीने के अंदर, एक दिन भी गुस्सा नहीं किया हो, ऐसा कोई है तो हाथ उठाओ। तो वो गोली वहां का वहां चली गई, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। कहा 10 महीने पहले गोली दी थी कि कम से कम, कहा था 1 मास का था, चलो 1 मास ने 10 मास दिया भी, 1 का 10 गुना, तो देने के बाद भी गुस्सा नहीं गया, तो फिर कब जाएगा वो? नहीं तो ऐसे बताओ भाई जी, एक दवाई आपकी काम की नहीं है, इससे गुस्सा जा नहीं सकता है, दोनों में से एक होना चाहिए ना, दोनों में से एक होना चाहिए। या हमने दवाई नहीं ली या गुस्सा नहीं जाता है। क्या सुनाएंगे आप? दवाई ठीक नहीं है, ऐसे कहना पड़ेगा ना, ये दवाई ठीक नहीं है। चलो मान लेता हूं दवाई ठीक नहीं है, अभी दूसरी दवाई देना पड़ेगा ना। अभी मधुबन में आए तो और एक दवाई देता हूं, ठीक है और एक दवाई मिलेंगी। और बताओ एक एक चीज बताओ, गुस्सा कर बिना के एक भी व्यक्ति नहीं है। मुझे लगा बापू नगर से तो एक तो मिलेगा हीरा, आज बाबा हीरे को याद कर रहा था, एक भी नहीं। चलो एक थोड़ा सा उठा रहा है पीछे से, हाँ बड़ा हाथ उठाओ, उठ के खड़े हो जाओ तो एक हीरा तो है, उठ के खड़ा हो दो, देखो दो हीरे है। हाँ देखो एक माता जी है, माता जी एक दिन भी गुस्सा नहीं किया। हाँ देखो और एक माता जी हाथ उठा रहे, दो मिल गए देख लो। हाँ देखो इनके लिए ताली बजाओ। देखो राजा में आठ आठ ही गद्दी होती है ना, उसमें से एक गद्दी बापू नगर में गई, सात रह गया। हाँ अभी भी चांस है, अभी भी और भी लक्ष्मी तैयार हो गई, नारायण अभी तक तैयार नहीं हुआ है, अभी भी टाइम है, नारायण तैयार हो सकता है, ठीक है। तो कहा श्रीमत के अनुसार तन 24 घंटे आप पूछ लो, तन किसकी सेवा में लगा रहे हो। तो बाबा ने कल ही मुरली में सुनाया था, कोई भी तन के द्वारा सेवा करो तो बाप को साथ रखते हुए सेवा करो। तो बाप को साथ कैसे रखेंगे, बाबा तो परम धाम है, हम तो यहां हैं, तो कर्म करते करते बाप को साथ कैसे रखेंगे। आज बाबा ने मुरली में कहा था, बच्चे खाना खाते हो जांच करो कि बाबा को याद करके खाना खाया, कैसे पता चलेगा, याद माना कैसे करते हो, क्या करते हो, बाबा खिला रहा है, बाबा तो खिला नहीं रहता, बाबा तो परम धाम में था, सोच रहे मैंने सही तो नहीं है ना। और बताओ और कैसे बाबा को याद करके खा रहे हो, बाबा के साथ मन चित्र को देखते हुए करते हो, नहीं तो बाबा की याद में खाना खाओ का कैसे खाएंगे, कौन बताएगा। हाँ अगर बच्चा मार्केट में जाता है, अरे मम्मी ने मुझे क्या लाओ कहा था, सब्जी लाओ कहा था, ये लाओ कहा था, याद है ना। तो आपको खाना खाते समय ये याद चाहिए, आज बाबा ने मुझे क्या करने के लिए कहा था, वो याद चाहिए। सवेरे मुरली क्यों सुनाता है, ये मुरली सारे दिन कर्म करने के लिए विधि विधान देता है, ये पढ़ाई है। आज सारा दिन में क्या क्या काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, इतना सारा लिस्ट बताया। तो वो कर्म खाना खाते समय कर्म करते करते याद करो, आज बाबा ने मुझे क्या करने के लिए कहा था, ये करो कहा था, ये करो करने कहा था, ये कैसे करना चाहिए, ये करने से क्या होगा, कल सवेरे और सुनाएगा। रोज बाबा बच्चों को क्यों पढ़ा करके, क्योंकि बाबा ने आज कहा कि आप अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हो, और किसके लिए, अपने लिए। ये तन कहां लगाना चाहिए कैसे, तो उसके लिए श्रीमत देता है बाबा, बच्चे तन भगवान की सेवा में कैसे लगाओ, मन कैसे लगाओ, धन कैसे लगाओ, ये याद ही नहीं आए। नहीं तो पहले जैसे सेवा करते थे ऐसे अभी भी कर रहे हो, पहले भी सब्जी काटते थे आप, खाना बनाते थे अभी भी कर रहे हो, अंतर क्या है। आज बाबा ने कैसे कहा था तो वो याद आना चाहिए। वो कर्म करते करते अगर आज के मुरली के पॉइंट याद करते हुए खाना खा रहे हो, कर्म करते हो, तो आपके साथ बाबा है, बाबा आपके पास नहीं था। भगवान भक्ति में भी कहते हैं जिनके साथ भगवान है उनको आंधी तूफान भी कुछ नहीं कर सकता है। तो भगवान आपके साथ नहीं रहता है, तो वो निराकार है अपने घर में, उसकी याद, कर्म करते उसकी याद, माने उसने मुझे क्या करने के लिए कहा, वो याद आना चाहिए। उसके लिए भी विधि बताई थी, याद नहीं रहता है। क्या विधि बताई थी, जेब में एक मुरली के पॉइंट रखो, कम से कम तीन दफा अपने आप को खिलाओ, किया नहीं किया, अगर ये करते थे तो गुस्सा कब से चला जाता था, किया नहीं है। देखो बाबू भाई तो ऐसे ही, बाबू भाई बताता नहीं है, बाबू भाई ने पकड़ना, टीचर ने बताना चाहिए ना, रोज याद दिलाना चाहिए ना, दवाई ले। देखो माँ बाप बच्चों को याद दिलाते हैं, दवाई लिया तो याद दिलाना पड़ता है ना। तो एक मुरली के पॉइंट जेब में रखो, तो ये ज्ञान रतन है, अगर ये आपके जेब में बार बार अपने को पढ़ाते हो तो ये खाना खाते समय, कर्म करते समय अगर ये याद है तो तन मन धन जहां लग रहा है वो श्रेष्ठ कार्य में लगता है। नहीं तो तन अभी भी लगा रहे आप, लगाते समय लगता है मेरा नाम होना चाहिए, मैंने ये किया है, दिखाने के लिए करते हो। धन भी अभी भी लगाते हो, मेरा नाम होना चाहिए, मैंने ही बाबा की सेवा के लिए धन दिया, बहन जी ने कहा था इसलिए मैंने धन लगाया, मुझे पूछा ही नहीं है, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो ये धन कैसे लगाना चाहिए? तो ये बाबा विधि बताता है। तो रोज एक मुरली के पॉइंट जो भी आपको अच्छा लगा तो उसको आज ही कम से कम 2-3 दफा पढ़ाओ, तब तक हमारे पुराने स्वभाव संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं। परिवर्तन एकदम नहीं होगा, पहले समझ में आना चाहिए कि मैंने देखो सुनने के बाद भी मैंने गुस्सा आज किया, ये अगर महसूस हुआ तो 50% परिवर्तन हुआ। गुस्सा करने के बाद भी महसूस नहीं होता मैंने नहीं किया, इन्होंने ऐसे बोला इसलिए मैंने बोला, मैंने गुस्सा किया वो गलत नहीं ये गलत है, तो महसूस भी नहीं होता है। तो संसार में बहुत सारी बातें होती है, बहुत चीजें सहन करना पड़ता है, और हम सहन किसी के लिए नहीं कर रहे, आपके लिए कर रहे हो। अगर आज इन्होंने गुस्सा किया, आपने एक शब्द बोला, 5000 साल के लिए आपने दोबारा संस्कार बना दिया, कलप के बाद दोबारा ये आपको गुस्सा करेंगी, आप भी गुस्सा करेंगे। अगर अभी किया और आपने कुछ भी नहीं किया, आपने शुभ भावना रखी, बाबा इनको सद्बुद्धि दे दो, आपने कुछ नहीं किया गलत, तो आपने उसको मिटा दिया। 5000 साल के लिए दोबारा वैसा कर्म नहीं हो, वो करेंगी आप नहीं करेंगे, क्या आपके अंदर संस्कार नहीं, आपने मिटा दिया था। ये आपके हाथ में, ये ज्ञान का बल है। तो कोई पूछेगा ये ज्ञान हम क्यों सुन रहे, दवाई क्यों ले रहे, सिर दर्द नहीं मिटता है पता है, तो भी सिर्फ दवाई लेंगे? नहीं है ना, किसने कहा ये दवाई ले लो सिर दर्द मिटेगा? विश्वास है, लेके देखते हो तब विश्वास होता है। तो यहां भी ज्ञान उसके लिए हम सुन रहे हैं कि हम बाबा के पास, भगवान ऐसा है बहुत अच्छा है, वो भक्ति भाव, भक्ति मार्ग में भावना थी, अब नहीं है, अब हम इधर आए हमारे संस्कार मिटाना है, एक ही लक्ष्य है कि जो दाग पड़ा हुआ है वो मिटाना है। दाग पड़ा हुआ कैसे पता चलता है? स्वप्न बताते हैं। आज बाबा ने कहा अगर विकर्म विनाश हुए है, ज्ञान योग अच्छा है, उसका प्रूफ क्या है? आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, अगर आपके अंदर ज्ञान योग की शक्ति है, विकर्म विनाश हुए है, प्रूफ बताया, देखते ही कशिश होंगी, है ना, किसी को देखते कशिश माना पावर है ना, खींचता है, आकर्षित। देखो कृष्ण का चित्र को देख लो, देखते कैसे खींचता है ना, किस कोई भी हो तो देखते ही लगता है, क्यों? पावर है चित्र को देखते हुए। तो चैतन्य के अंदर भी, अंदर पाप है तो उसके वाइब्रेशन चिंतन चलता है, तो पाप है कैसे पता चला? स्वप्न बताता है अंदर क्या क्या भरा हुआ है। तो सवेरे फिर आप पूछेंगे कि सवेरे 2 बजे उठने से योग होगा? आज जो 2 बजे उठ के योग किया था, जिसने जो भी परमधाम में पहुंचे थे, वो हाथ उठाओ, परमधाम पहुंचे थे? माता जी परमधाम में गई थी, दिखाई दिया बाबा सफेद था कि लाल था? ठहरो, माता जी को पूछता हूं, माता जी बाबा सफेद था कि लाल था? पता ही नहीं, हाँ शक्ति आपे छे, लेकिन कैसा था शिव बाबा, शक्ति देने वाला वो कैसे था? सफेद था लाल था, वो पता होना चाहिए ना। तो इसलिए याद रखो 2-3 बजे पहले था, अभी अभी क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। 15 मिनट ही योग में बैठो और मन और बुद्धि परमधाम तक जाना चाहिए, ज्वाला स्वरूप योग चाहिए। पहले छोटे बच्चों को कहते हैं जल्दी बहुत खा लो, मोटा नहीं बनते ना, थोड़ा सा खा लो, हजम होना चाहिए। पहले पता नहीं था योग कैसे करना क्या करना, बैठ करके चिंतन करना पड़ता, मनन करना पड़ता था। अभी रेडी, बाबा ने बहुत चीजें स्पष्ट किया है, बहुत साल हो गए, अभी 15 मिनट ही बैठो, 1 सेकंड भी देह और देहधारी के विचार नहीं आना चाहिए, तब कहेंगे आपके 15 मिनट जमा हो गए हैं। एक घंटा बैठे, दो मिनट बाप घर की याद आए, बच्चों की याद आए, और किसकी याद आए, शरीर दर्द किया, इधर देखा, नींद आई, 15 मिनट बैठे, 10 मिनट तो ऐसे चला गया, जमा कितना हुआ? तो क्वालिटी वाला चाहिए। 15 मिनट ही योग में बैठो, मन और बुद्धि परम धाम में एकाग्र होना चाहिए। कैसे होगा वो भी सिखाया था, आज शाम को भी करके देख लो, अभी भी करके देखना। तो वो न होने के कारण जो आप कहते हो हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहे, एक समझ में आ रहा है गुस्सा नहीं करना चाहिए, न चाहते हुए आ जाता है, क्यों? शक्ति नहीं है, ब्रेक नहीं है। तो दोनों, तब बाबा ने कहा ज्ञान और योग की शक्ति दोनों चाहिए। ज्ञान सुनाया, मुरली के पॉइंट याद रखना है, तब आप कर्म करते करते याद आएगा, अरे बाबा ने आज कहा था गुस्सा नहीं करना है, उन्होंने बहुत दुख दिया, बहुत गलत किया, हाँ उनका अपना कर्म है, करने दो, मुझे चुप रहना है। तो ज्ञान का उपयोग किया है ना, तो श्रीमत के अनुसार कर्म किया, वो श्रेष्ठ कर्म होगा। समझ में आया? तो श्रेष्ठ श्रीमत को उपयोग करना है। और एक श्रीमत है कि उस पाप को, अंदर जो पाप है उसको मिटाना है सदा के लिए। तो मिटाने के लिए तो बार बार आएगा, तो कैसे मिटेगा? तो बाबा ने सदा कहा, बच्चे आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। तो आत्मा समझ कर कैसे करेंगे? वो मधुबन में करो, यहां आके आज शाम को बैठो, अभी भी 5 मिनट बैठना, और वो तपस्या चाहे, एक एक बजे, दो दो बजे उठे, नींद भी आई, वो मेहनत नहीं चाहे, भले 4 बजे उठो, 4 से 4:30 या 4 से 4:45 जो चलता है, उस 15-40 मिनट के अंदर आपके मन में आपका देहधारी और किसी का भी विचार नहीं आया, सिर्फ आत्मा का चिंतन, बताता हूं विधि, आत्मा और बाबा ये दोनों ही चिंतन चला, तब आपका पूरा 40 मिनट शक्ति जमा हो गई है। ऐसा होता है? वो पूछो, वो चाहे 40 मिनट ही, नहीं तो 15 मिनट बैठो, 20 मिनट बैठो, लेकिन एक सेकंड भी आंखें भी हिली नहीं, इधर उधर नहीं, सीधा आत्मा समझ के बाबा को या। वो कैसे? तो आप गुजराती में स्वाध्याय करते हो, बहुत दफा बताया लेकिन अभी दोबारा याद रखना, आराम से बैठो, इधर आके बैठो, कहीं भी बैठो, बाबा के कमरे में जाते हैं वो टाइम अलग है, बताया सवेरे बैठो, बाबा से बात करो, दिल की बात करके आओ, तपस्या सवेरे और शाम को, यहां बैठते ही कोई किसी का इधर उधर कोई काम नहीं है, आराम से बैठो और इधर बाबा का चित्र इसलिए रखा, देखते रहो, देख करके अपने आप से पहले बात करना चाहिए कि अपने को जागृत करो, मैं कौन, किसको पूछा, बुद्धि, नहीं तो क्या मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु, अरे आज उसको फोन करना था, क्यों? बुद्धि खाली रहती है। आज तक हमारा योग ऐसा हो रहा है, योग में बैठते मन चलता है, मन के अंदर अच्छे विचार करते हो, बाबा आप बहुत अच्छे हो, प्यार के सागर हो, बाबा आप आनंद के सागर हो, अरे कल उसने ऐसे बोला था, बुद्धि खाली रहती है। तो राजयोग एक अलग चीज है, ये भक्ति वाला योग नहीं है। तो ये दोनों चीज है, भारत में देखो दो हाथ जोड़ते तब नमस्ते कहते, एक हाथ जोड़ने को नमस्ते नहीं, सारा विश्व एक हाथ जोड़ता है, एक ही भारत देश है, दो हाथ जोड़ते हैं, आत्मा के दो हाथ है। तो मन और बुद्धि को पहले जोड़ना चाहिए। तो उसके लिए 5 प्रश्न है, जब भी आप बैठते हो योग में सवेरे और शाम को, बैठते अपने आप से बात करो, मैं कौन, बुद्धि ने जवाब देना चाहिए, हां मैं आत्मा हूं। फिर मन पूछेगा मेरा रूप कैसा है, सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं, बुद्धि ने जवाब देना चाहिए। तो मन प्रश्न करता है, बुद्धि माने ये दोनों यहां ही है, तो इधर उधर नहीं जाएगा, दूसरे विचार नहीं आएंगे। तीसरा, मेरे गुण, मेरे 7 गुण हैं, एक एक गुणों को याद करो। जब हम परम धाम से आए थे कैसे आए थे, कितने पवित्र थे, ऐसे मुझे बनना है, कितना शांत शीतल था मैं, मुझे ऐसे शांत शीतल बनना चाहिए। तो 7 गुणों को धीरे धीरे याद करो, जागृत करो उस गुणों को। फिर चौथा, मेरे कर्म, मैं शरीर को चलाता हूं, अभी योग में बैठने के बाद शरीर को हिलाना नहीं, शरीर का कोई काम, इधर कौन गया कौन आया ये देखना ही नहीं, आखिर इधर आंखें बंद भी नहीं करना है, खोल के बैठता है। पांचवा, मैं कहां से आया? ऊपर से। अब बाबा की आठ शक्ति, एक एक शक्ति ले लो। शिव बाबा कौन? पवित्रता का सागर। अब बाबा से बात करो, बाबा आप कहते हो मेरे जैसे बनो, आप परमधाम में, हम यहां हैं, मैं आपके जैसे पवित्र कैसे बनूं, क्या करूं उसके लिए? बाबा से बात करो। आप शांति के सागर हो, आप कभी गुस्सा नहीं करते हो, हम भी गुस्सा नहीं करना चाहते, हम आपके बच्चे हैं, हम गुस्सा नहीं करें, इसके लिए मैं क्या करूं? आप सारे विश्व को सुख देते हो, सुखदाता हो, मैं भी आपके जैसे सभी को सुख देना चाहता हूं, उसके लिए मैं क्या करूं? बाबा से बात करो यहां। इसको कहते आत्मा समझ परमात्मा से बात। इतना सहज है, लेकिन पहले आत्मा समझने के लिए ये पांच प्रश्न चाहिए। अगर ये भाई कौन है तो दो तीन प्रश्न पूछेंगे ना, भाई जी आपका नाम क्या है, आप कहां से आए, आप क्या करते हो, तब पता चलेगा ना। सिर्फ एक ही नहीं, मैं आत्माओं कहने से नहीं हुआ, दो तीन प्रश्न चाहिए। तो यहां भी रोज पूछ बैठते ही पांच प्रश्न पूछना चाहिए। तो आत्मा पूरी शरीर के विचार नहीं आए तो मन और बुद्धि एक हो गए, एकाग्र हो गया, फिर ध्यान लगाओ शिव बाबा के पर, उनसे बात करो। तब क्या होता है, जो शक्ति प्राप्त होती है वो देखना। अगर आपको कहा था कम से कम एक महीना, दो महीना, छह महीने तक रोज करते हो, जो गहरे संस्कार है, दाग है, स्वप्न आते बुरे बुरे, धीरे धीरे देखना स्वप्न मिटते जाता है। अगर ये हमने मिटाया नहीं, सारे कल्प के अंदर एक ही चांस है ये कि बच्चे आप पाप मिटा सकते हो, क्योंकि पाप कटेश्वर स्वयं आया हुआ है। और बाबा ने कहा मैं पतित आत्मा को पावन करने आया हूं। ऐसा योग करते है कभी बताओ? नहीं करते है। सुनते हैं, बैठते ही पुरानी आदत याद आती है, पुराने बैठते ही बाबा आप बहुत अच्छे हो, आप प्यार के सागर हो, एक ही याद आता है बाबा प्यार का सागर है ना। तो वो चाहिए कि विधि चाहिए, तब तक मन बुद्धि ऊपर नहीं जाता है। अगर दो मिनट भी बैठो, 15 मिनट सवेरे और शाम को, ये विधि, बाकी आप जो करते हो करो, गलत नहीं है। सदाचन चक्कर घुमाओ और बाबा और कुछ कहता है स्वमान में रखो, करो, लेकिन विकर्म के लिए, विनाश करने के लिए वो शक्ति चाहिए, क्योंकि आत्मा के अंदर पाप है, आत्मा के पाप मिटाने के लिए वो परमात्मा की शक्ति चाहिए, नहीं तो नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर बनना पड़ेगा, दोनों में से एक। राजा बनना चाहते हो कि दास दासे बनना ठीक है? हाँ, तो नंबर वन बनना है तो अंदर के मिटाना पड़ेगा ना, नहीं तो कहते नहीं हमारा योग बहुत अच्छा लगता है, हमको बहुत अच्छा मजा भक्ति में, देख लो आज कहा ढोल बजाते हैं, गीत बजाते रहते हैं, भगवान की महिमा कर झूमते रहते हैं, कहते बहुत अच्छा है। तो यहां भी ऐसे भी है, बैठे एक एक घंटे बैठो, बाबा से बात करते रहो, बाबा आप प्यार के सागर हो, अपने को शरीर समझ के शरीर के बातें करते है, तो वो क्या हो गया, भक्ति वाला योग हो गया। गलत नहीं है, सही है वो भी, लेकिन ऑर्डिनरी है। उससे जो विकर्म विनाश होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, लेकिन उस 15 मिनट के अंदर विकर्म नहीं बन रहा है, फायदा है नुकसान नहीं है, है ना, विकर्म नहीं बन रहा है, लेकिन बना हुआ मिट नहीं रहा है। हम आए बना हुआ को मिटाने आए हैं, और नहीं बनना चाहिए तो कितने साल से ज्ञान सुन रहे, है ना, तो उसका उपयोग करना चाहिए। ये दो बातें आज बाबा ने कहा, दो बातों पर ध्यान दे दो। एक, 24 घंटा संसार में रहते हुए अपने आप से पूछो ये शरीर किसकी सेवा में लग रहा है। कल बीमार हो, दर्द हो, बाबा मेरा दर्द ठीक करो, आप सेवा इनकी करो और बाबा दर्द ठीक करे, है ना, आप सेवा इनकी करो और बाबा करे, कैसे होगा? आप पूछो मैंने इस तन से बाबा की सेवा कितना किया है, पूछ लो 24 घंटे में कितना किया है, मन कितना लगाया, ज्ञान का चिंतन, ज्ञान सुनाया, योग लगाया, तो ये मन स्वच्छ होगा। और धन कहां लगाया, किसकी सेवा में लगाया वो पूछ लो, कितना बाबा की सेवा में लगाया, एक का पदम गुना कहा, इसलिए विधि बताई थी वहां। अगर आज मुरली के पॉइंट एक व्यक्ति को सुनाते हो, एक जन्म के लिए आप धनवान बनते हो, कि ये ज्ञान धन अविनाशी है, ये आत्मा को सदा याद रहेगा। अगर 1,00,000 रुपया दिया, खाया पिया खत्म, जाते समय ले जाएंगे नहीं, तो सारा दिन में पूछो आज के मुरली के पॉइंट कितने लोगों को सुनाते हो। सुनाना मना कर्म, संस्कार बन गया। कितना भी आप मुरली के पॉइंट लिख के रखो कोई फायदा नहीं, लिखा कागज सफेद से काला कर दिया। मुरली के पॉइंट दान करो, माताजी से मिलो, अच्छी तरह से मिलो, माताजी ओम शांति, फिर देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, तब कहेंगे आप ज्ञानी तो आत्मा है। अपने आप से पूछ लो दिल पर हाथ रखकर कि हम ज्ञानी तो आत्मा है। अगर है, किसी को देखते ही आप ओम शांति करते, बाबा के बच्चे से मिलते ओम शांति करते हो, करने के बाद अगर उसको मुरली के पॉइंट सुनाते हो तो कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा है। एक पुण्य आत्मा कहते हो, पवित्र आत्मा कहते हो, क्या प्रूफ? किसी को देखते ही शुभ बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। और किसी भी अज्ञानी अज्ञानी मित्र दुश्मन कोई भी हो, देखते ही आपके मन में उनके प्रति शुभ भावना आई, ये पुण्य आत्मा की निशानी है। पुण्य आत्मा के अंदर और कुछ है ही नहीं है। देखते ही मन में विचार आता है, शुभ विचार आता है, क्यों? आत्म अभिमान। बाबा ने कल 2-3 दिन से कह रहा था कि आत्मा भाई भाई को दे, आत्मा तो दिखाई नहीं देता है, माताजी दिखाई देती है, लेकिन माताजी को देखते याद है कि ये शुभ बाबा का बच्चा है, बाबा इनका कल्याण करो, इनको शांति की शक्ति दे दो। इसको क्या आत्मिक स्मृति दृष्टि से दिखाई नहीं देगा, आज शरीर दिखाई देगा, लेकिन ये स्मृति है, इस शरीर में वो शुभ बाबा का बच्चा बैठा हुआ है, आत्मा है, उनके प्रति शुभ भावना आएंगी। कोई भी हो, किसी का भी हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, ये 2 चीजें चाहिए। कर सकते हैं कि कठिन है? अभी सुना भाई, अभी वादा करेंगे दोबारा, बताओ फिर वादा करेंगे? पहले किया तो भूल गया, बाबा कहते 1 दफा माफ करो, दोबारा माफ होगा नहीं? अभी बाबा के दरबार में बैठ के बताओ जो समझते हैं, फिर से 1 महीना ही, 1 साल भी नहीं, अभी 10 महीना दिया और 1 मधुबन भट्टी करने के बाद पावर होगा ना, तो अभी 1 महीने के अंदर जो समझते हैं हमको 1 गुस्से को छोड़ना है। अभी दोबारा हाथ बताओ, सोच समझ के बताओ, सभी जो नहीं कर सकते नहीं उठाना, नहीं हमसे नहीं हो सकता है। हाँ, जो समझते हैं, मधुबन में भट्टी किया, बाबा ने बुलाया और बाबा शक्ति देगा, बाबा ने तपस्या किया यहाँ, तो इधर तो ज्यादा शक्ति होंगी है ना, तो मुझे यहां से जाने के बाद 1 महीना हम गुस्से को पूरा कंट्रोल करेंगे। दवाई दिया है, दवाई के बिगड़ नहीं होगा, मुरली के पॉइंट जेब में रखना है ना, उसके बिगड़ नहीं होगा। तो ये करते हुए भाई बताओ जो समझते हैं, 1 महीने के अंदर हम भाई जी करेंगे, करने की कोशिश नहीं, हम बिल्कुल करेंगे, हिम्मत जिसको है वो हाथ उठाओ। सभी ने उठाना, देख लो, मैं अच्छी तरह देखो, भाइयों को पहले देखता हूं, हाँ कौन करे, बाबू भाई ने हाथ नहीं उठाया ना इसलिए देखता हूं, नहीं कौन उठाया, किसने नहीं उठाया देखना पड़ेगा ना। अब माताएं उठाओ, माताओं से भी देख लो ना कौन कौन थी। 2 बजे उठे हुए माताजी ने बड़ा हाथ उठाया, देख लो, हाँ माताजी भी दिखाई दिया, देखेंगे ना, बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा। अगर किसी ने दिया तो, अगर कोई देगा आपको तो क्या करेंगे आप, लेंगे नहीं? पक्का? अच्छा, देखना पड़ेगा ना 1 महीने के लिए, ठीक है? तो अभी पक्का, अभी 1 महीने के बाद मैं पूछूंगा, अभी 10 महीने के बाद पूछा, अभी मैं 1 महीने के बाद बापू नगर आने वाला हूँ, हाँ पहले बताता हूँ। सुना, 1 महीने के बाद आऊंगा तो देंगे, मिलेगा रिजल्ट पक्का। हाँ, अभी से याद रखना, इसके लिए अभी 5 मिनट बिल्कुल साइलेंस, आंखें खोल के, आंखें बंद नहीं करना, इधर देखते रहो बाबा को, और ये 5 पॉइंट बताओ याद करो कि मैं कौन। आराम से बुद्धि से जवाब आता है क्या, देखना, बुद्धि से आवाज आना चाहिए, फिर मेरा रूप, बुद्धि ने जवाब देना चाहिए मेरा रूप क्या है, 3रा मेरे 7 गुण है, 1-1 गुणों को धीरे धीरे याद करो, 4था मेरे कर्म, मैं आत्मा इस शरीर को चलाता हूं, अभी शरीर को नहीं चलाना है ना, आंखों से इधर उधर नहीं देखना है, मैं आत्मा कहां से आया, परम धाम से आया था, परम धाम में शुभ बाबा है, ठीक है, अब बाबा को याद करना, ऐसे 5 मिनट पूरा करके दिखाओ।
किसने किसने 5 प्रश्न सॉल्व किया बताओ? कि दूसरे एक बार बापूनगर चक्कर लगा के आए? बाहर गए थे मधुबन से, नहीं गए? पूरा 5 किया, ऊपर पहुंच गया, दूसरा कोई विचार नहीं आया? नहीं आया? एक बार तो जाके आए घर में? नहीं, एक विचार आया। छोटू बताओ, मम्मी याद नहीं आई? कोई नहीं याद आया? परमधाम में गया तो ऊपर? 5 प्रश्न बताओ तो फिर कौन से? ये विचार है ना कि मन क्यों, कि जानना चाहिए कि संस्कार अपने आप परिवर्तन, गुस्सा अपने आप नहीं जाएगा। इसलिए शास्त्रों में भी कहा, विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया तो क्रोध मिटा नहीं है। तो विधि चाहिए। देखो काला दाग पड़ता है, ऐसे साबुन से घिसो नहीं जाता है। हर एक चाय का दाग के लिए अलग साबुन है और किसके लिए अलग साबुन है। तो आराम से बैठ के अपने आप से समझाओ कि अगर इन्होंने गलत किया, इन्होंने दुख दिया, इन्होंने गुस्सा किया, मैंने कुछ बोलने से क्या वो ठीक हो जाएगा? क्या वो परिवर्तन हो जाएगा? खराब चीज अच्छी हो जाएंगी तो मेरा क्या होगा? मेरे अंदर क्या हुआ? मेरे अंदर संस्कार बनेगा। और अब जो हम संस्कार भरते वो 5000 साल के लिए पक्का हो गया। तो हम किसके लिए ज्ञान में आए हैं? क्या करना है? अपने आप से बात करो। आराम से भट्टी इसलिए रखते हैं, समय वहां मुरली क्लास में आए, फटाफट जाना है नौकरी में, खाना बनाना है और कुछ करना है, अभी कुछ नहीं करना है, खाली है। बैठ करके खाना खाते समय, चलते कमरे में जाने के बाद, आज क्लास सुना, ये सुना, मुझे करना क्या है? अपने आप से बात करो। तो मेरे अंदर ये एक एक चार बाबाने का 4 विकार मैं लूंगा, ये एक विकार स्वयं को भी जलाता है, औरों को भी जलाता है और दूसरों को दिखाई देता है ना, बाबा की बदनामी होती है। तो अपने आप को समझाओ, क्या इतनी छोटा सा एक गुस्सा हम नहीं छोड़ सकते? क्या तकलीफ है इसके अंदर? क्यों गुस्सा करना चाहिए? गुस्सा करने से फायदा क्या है, नुकसान क्या है? बाबा से हम कितने दूर हो जाएंगे? अपना जीवन का क्या होगा? परिवार का क्या होगा? ऐसे अपने आप से बात करो। तो बात करना में बुद्धि को समझाने, इनको बैठ के हम समझाते हैं ना, बच्चे ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे अपने आप को समझाओ। ये मन बुद्धि को समझाता है। जब बुद्धि को समझ में आता है, हाँ चाहे कुछ भी हो, आज के बाद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आपने दृढ़ संकल्प किया, वो संकल्प परिस्थिति कल आएंगी, सामने कोई आपको बिना कुछ किए हुए बहुत परेशान करेगा, उस समय बुद्धि कहेंगे कल आपने निर्णय लिया था नहीं बोलना है। बुद्धि मन को रोकती है, इसको कहता दृढ़ संकल्प की शक्ति। तो दृढ़ संकल्प अपने आप नहीं आया, समझाने के बाद बुद्धि के अंदर वो दृढ़ता आती है। तो हर बात के लिए रोज एक एक ले लो, जो भी अभी इधर आके बैठे हो, ज्ञान सुना, सुनने के बाद कोई एक पॉइंट ले लो कि मुझे क्या करना चाहिए जो उससे मैं भी संतुष्ट हूं, बाबा भी संतुष्ट हो जाए, परिवार भी संतुष्ट हो जाए, है ना। तो सभी का दुआ चाहिए, तो क्या करना चाहिए? कोई भी एक सहज बात ले लो और उसका अपने आप को समझाओ, ठीक है। और योग में बैठते हो तो योग, दुनिया में हमने बहुत तपस्या किया, भक्ति में कितनी तपस्या किया, कितना व्रत किया है, लेकिन अभी जो शिव बाबा जो बताता है वो तपस्या से विकर्म विनाश होगा, है ना। और कोई प्राप्ति चाहिए? महल चाहिए कि देखो, सोना चाहिए, हीरा चाहिए, देगा चलेगा? नहीं, ये यहां छोड़ देना है बाबा, ये सब नहीं चाहिए। माया ये देंगी, महल देंगी, गाड़ी देंगी, ये देंगी, ये सब लेके आपको तपस्या से मिटाएंगे। साधन मिलेगा, साधना गुम हो जाती है। तो ये अल्प काल के लिए, इसको बाबा ने कहा माया का शो है, अंत में ये सब होगा। तो ये सब होते हुए भी तपस्या 15 मिनट सवेरे, 15 मिनट शाम को कम से कम। तो अब विधि पूर्वक बैठ करके
क्योंकि आत्मा को शक्ति चाहिए, आत्मा माना मन बुद्धि, ये दोनों वहां पहुंचना चाहिए। और बाबा से बात करो, क्योंकि अच्छे बुरे कर्म करने वाले कौन है, यही दो है, मन और बुद्धि। अगर ये दोनों स्वच्छ हो जाए तो इनके द्वारा जो भी होगा वो श्रेष्ठ कर्म होगा ना, समझ, सच बात है। इन दोनों को स्वच्छ करना चाहिए। अगर पाव मजबूत हो तो इधर से उधर तक जा करके कर्म कर सकते हैं ना, पाव मजबूत नहीं है तो कैसे कर्म करेंगे, करना चाहते हैं लेकिन पाव मजबूत नहीं है। ठीक है, अभी क्या याद रहेगा, एक महीने के बाद, एक महीने का 10 महीना दिया चला गया, हाँ अभी बापूनगर की लाज रखना पड़ेगा, भारती बहन ऊपर से पूछेंगी देखेंगी, हाँ तो क्या किया बच्चों ने, तो कुछ करना पड़ेगा ना, कि ऐसे ही करके बताएंगे कि नहीं, किसको काम दे दो, बाबू भाई को दे दो कि बहन जी को दे दो, रिजल्ट पता होना चाहिए ना। मधुबन में भट्टी करके गए कि एक महीने के बाद रिजल्ट पूछेंगे ना, क्या किया मधुबन ने, तब अगले साल आने के लिए छुट्टी, नहीं तो नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो हर साल हम आते हैं, जिसने परिवर्तन किया, नहीं तो दूसरों को चांस दे दो, आपने किया परिवर्तन नहीं किया दोबारा चांस नहीं है, उनको देंगे ना, हाँ कुछ कंडीशन डालना पड़ेगा। बाबा एक दफा चांस देता है, मधुबन में आओ अपने को कुछ परिवर्तन करो, बहुत कुछ नहीं, थोड़ा सा, एक अंगुली जितना। बाबा ने कहा हिम्मत का एक कदम रखो, 1000 कदम में पदम गुना मैं मदद करूंगा। ठीक है, तो बापू नगर को कुछ करके दिखाना चाहिए, करेंगे ना पक्का। ओम शांति।